नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Nut Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, जिल लेपोर की इफ देन। सबटाइटल, हाउ द सिमुलमैटिक्स कॉर्पोरेशन इन्वेंटेड द फ्यूचर, शीत युद्ध काल के अमेरिका में डेटा कंप्यूटिंग और राजनीतिक प्रभाव के शुरुआती गठजोड़ का इतिहास है। यह पुस्तक एक्सर आइसरो में स्थापित सिमुलमैटिक्स कॉर्पोरेशन की कहानी के माध्यम से दिखाती है कि मतदाता प्रोफाइलिंग, व्यवहार की भविष्यवाणी, लक्षित विज्ञापन और सूचना हेरफेर जैसी आज की परिचित तकनीकें इंटरनेट युग की अचानक उपज नहीं है। लेपोर, जो इतिहासकार और पत्रकार है, कंपनी के अभिलेखी इतिहास को व्यापक राजनीतिक संदर्भ से जोड़ती है। उनका उद्देश्य केवल एक भूली हुई कंपनी का परिचय देना नहीं, बल्कि उस सोच की जांच करना है जिसमें मनुष्यों को डेटा श्रेणियों में बांटकर उनके निर्णयों का अनुमान लगाने योग्य माना जाता है। पुस्तक में अंदरवाले सिख के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, विज्ञापन उद्योग, समाचार माध्यमों और वियतनाम युद्ध में कंपनी की भागीदारी के उदाहरण आते हैं। इसलिए यह तकनीक का उत्सव नहीं, बल्कि भविष्यवाणी करने वाली प्रणालियों की सीमाओं, उनके दावों और उनके लोकतांत्रिक परिणामों का आलोचनात्मक इतिहास है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सिमुलमैटिक्स ने डेटा आधारित व्यवहार पूर्वानुमान की शुरुआती भाषा बनाई। पुस्तक का केंद्रीय तर्क है कि आज जिसे बिग डेटा, माइक्रो टारगेटिंग या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कहा जाता है, उसका वैचारिक ढांचा बहुत पहले तैयार हो चुका था। सिमुलमैटिक्स का नाम सिमुलेशन और ऑटोमेशन के मेल से बना था, और कंपनी का दावा था कि कंप्यूटरों तथा सामाजिक विज्ञान संबंधी आंकड़ों की सहायता से संभावित मानवीय व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। इसका लक्ष्य केवल चुनावी मतदान नहीं था। कंपनी ने उपभोक्ताओं की खरीद, समाचार के प्रति प्रतिक्रिया, यातायात और युद्धग्रस्त समाजों की राजनीतिक मनस्थिति तक को मॉडल करने की कोशिश की। लेपोर इस दावे की आकर्षकता और उसकी समस्या दोनों को स्पष्ट करती है। आकर्षण यह था कि जटिल सामाजिक निर्णयों को मापने योग्य संकेतों में बदला जा सकता था। समस्या यह थी कि आंकड़ों से बनी श्रेणियां जीवित मनुष्यों की बदलती परिस्थितियों, मूल्यों और एजेंसी को अधूरा पकड़ती थी। पुस्तक यह भी रेखांकित करती है कि तकनीकी नवीनता का दावा अक्सर पुरानी प्रशासनिक इच्छाओं को नया रूप देता है, जैसे लोगों को वर्गीकृत करना, उनकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित करना और अनिश्चितता को गणना द्वारा घटाने का प्रयास। इस प्रकार सिमुलमैटिक्स को आधुनिक डिजिटल कंपनियों का सीधा प्रतिरूप मानने से अधिक उपयोगी यह समझना है कि उसने डेटा को सामाजिक शक्ति में बदलने का प्रारंभिक व्यावसायिक मॉडल प्रस्तुत किया। दूसरा, पीपल मशीन और एक्सो 7000 का चुनाव, मतदाता को नागरिक से डेटा खंड में बदलना, सिमुलमैटिक्स की सबसे चर्चित परियोजनाओं में जॉन एफ केनेडी के असप्त सत्ता के राष्ट्रपति अभियान के लिए किया गया काम शामिल था। कंपनी के पीपल मशीन कार्यक्रम ने जनसांख्यिकीय लक्षणों के आधार पर मतदाताओं के सैकड़ों वर्ग बनाए और अनुमान लगाया कि अलग अलग नीतिगत रुखों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। इसका महत्व केवल तकनीकी नहीं था, इसने चुनावी राजनीति में एक बदलाव का संकेत दिया, जहां उम्मीदवार का सार्वजनिक संदेश सभी नागरिकों से साझा संवाद होने के बजाय अलग अलग समूहों के लिए अनुकूलित रणनीति बन सकता था। लेपोर के वर्णन में कंपनी के अनुमान हमेशा असाधारण वैज्ञानिक खोज नहीं थे, कई निष्कर्ष साधारण राजनीतिक समझ जैसे भी थे। फिर भी कंप्यूटर की भाषा ने उन्हें निष्पक्षता और सटीकता का आभास दिया। यही पुस्तक की महत्वपूर्ण चेतावनी है। किसी मॉडल का गणितीय रूप उसे अपने आप सही, तटस्थ या लोकतांत्रिक नहीं बना देता। वर्गीकरण किन आंकड़ों पर आधारित है, किसे प्रतिनिधित्व मिला है और सफलता किस परिणाम को माना गया है, ये निर्णय मनुष्यों के होते हैं। चुनावी माइक्रो टारगेटिंग का जोखिम यह है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को विचार विमर्श करने वाले नागरिकों की जगह प्रभावित किए जाने वाले खंडों के रूप में देखने लगे। यह अध्याय वर्तमान चुनावी डेटा उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है। तीसरा, वियतनाम में सामाजिक विज्ञान का सैनिकरण और डेटा संग्रह की नैतिक सीमा। लेपोर सिमुलमैटिक्स के इतिहास को वियतनाम युद्ध से जोड़कर दिखाती है कि व्यवहार पूर्वानुमान केवल बाजार या चुनाव की तकनीक नहीं था। पेंटागन के लिए कंपनी ने दक्षिण वियतनामी आबादी की सहानुभूतियों, आशंकाओं और प्रेरणाओं को समझने के उद्देश्य से शोध किया। इस काम में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों, साक्षात्कारों और स्थानीय लोगों से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से ऐसी जनसंख्या छवि बनाने की कोशिश हुई जिसे प्रचार और सैन्य पैसिफिकेशन नीतियों में इस्तेमाल किया जा सके। पुस्तक इस प्रयास की नैतिक और ज्ञान संबंधी विफलता दोनों की ओर संकेत करती है। नैतिक प्रश्न यह है कि युद्ध की परिस्थितियों में एकत्रित निजी या सामुदायिक जानकारी सहमति, सुरक्षा और शक्ति के असमान संबंधों से मुक्त नहीं हो सकती। ज्ञान संबंधी प्रश्न यह है कि क्या अत्यंत विविध समाज को एक कथित राष्ट्रीय मनोविज्ञान में समेटा जा सकता है। भाषा, स्थानीय इतिहास, भय, हिंसा और राजनीतिक दबाव को संख्यात्मक संकेतों में बदलने से वास्तविकता सरल दिख सकती है, लेकिन वह अधिक समझी हुई नहीं हो जाती। इस प्रसंग से पुस्तक स्पष्ट करती है कि डेटा प्रणाली का मूल्यांकन उसके तकनीकी कौशल से नहीं, उसके उद्देश्य, संदर्भ और परिणामों से होना चाहिए। आज निगरानी, जोखिम स्कोरिंग और सुरक्षा तकनीकों पर होने वाली बहसों के लिए यह एक उपयोगी ऐतिहासिक कसौटी है। चौथा, पूर्वानुमान का अतिविश्वास, मॉडल की सीमाएं और तकनीकी प्रचार इफ देन सिमुलमैटिक्स को सर्वशक्तिमान भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। कंपनी ने व्यापक दावे किए, पर उसके मॉडल सीमित आंकड़ों, अनुमानित संबंधों और उस समय की कंप्यूटिंग क्षमता पर निर्भर थे। कई बार उसके निष्कर्षों में ऐसा सामान्य ज्ञान शामिल होता था जिसे मशीन की रहस्यमय शक्ति के रूप में पेश किया गया। लेपोर्ट का विश्लेषण इस अंतर पर ध्यान दिलाता है कि किसी तकनीक की सार्वजनिक छवि और उसकी वास्तविक कार्यक्षमता अलग अलग हो सकती है। निवेशक, ग्राहक और मीडिया अक्सर उस भाषा से प्रभावित होते हैं जो अनिश्चित भविष्य को नियंत्रित करने का वादा करती है, लेकिन सामाजिक दुनिया में कारण अनेक होते हैं। लोग सीखते और प्रतिक्रिया देते हैं तथा राजनीतिक घटनाएं मॉडल के बाहर के बदलावों से प्रभावित होती है। इसलिए पूर्वानुमान का उपयोग निर्णय का सहायक हो सकता है, निर्णय का विकल्प नहीं। कंपनी की व्यावसायिक कठिनाइयां भी बताती है कि डेटा आधारित समाधान का प्रचार अपने आप टिकाऊ क्षमता में नहीं बदलता। यह पहलू आधुनिक एल्गोरिथमिक उत्पादों के मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। किसी प्रणाली के दावे को उसके प्रशिक्षण डेटा, त्रुटि दर, स्वतंत्र परीक्षण, उपयोग के संदर्भ और नुकसान की जवाबदेही के आधार पर जांचना चाहिए। पुस्तक तकनीकी निराशावाद नहीं सिखाती, बल्कि प्रमाण और प्रचार के बीच अंतर करने की ऐतिहासिक समझ देती है। अंत में, भूला हुआ कॉर्पोरेट इतिहास, लैंगिक अदृश्यता और सिलिकॉन वैली की नवीनता का मिथक। लेपोर की विशिष्ट उपलब्धि यह है कि वह तकनीकी इतिहास को केवल आविष्कारों या प्रमुख पुरुष विशेषज्ञों की कहानी नहीं रहने देती, सिमुलमैटिक्स के संस्थापकों, शोधकर्ताओं, ग्राहकों और उनके पारिवारिक संसार के साथ पुस्तक उन महिलाओं की उपस्थिति और अदृश्य श्रम पर भी ध्यान देती है जो इस बौद्धिक तथा सामाजिक परिवेश का हिस्सा थीं। यह दृष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी संस्थानों की शक्ति केवल मशीनों से नहीं बनती, बल्कि वित्त, घरेलू श्रम, पेशेवर नेटवर्क, मीडिया प्रचार और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी बनती है। साथ ही पुस्तक उस लोकप्रिय धारणा को चुनौती देती है कि डिजिटल मंचों ने बिल्कुल नई समस्याएं पैदा की हैं। फेसबुक, गूगल, अमेज़न या कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे बाद के उदाहरणों से तुलना करते हुए लेपोर दिखाती है कि डेटा संग्रह, लक्षित प्रभाव और व्यवहार नियंत्रण की आकांक्षा का इतिहास पुराना है, फिर भी वह सरल समानता से बचने का आधार देती है क्योंकि आज की प्रणालियों के पास अधिक डेटा, तेज कंप्यूटिंग और व्यापक पहुंच है। इसीलिए अतीत को जानना वर्तमान को कम गंभीर मानना नहीं है। इसका अर्थ है यह पहचानना कि किन संस्थागत दावों, व्यावसायिक प्रोत्साहनों और राजनीतिक कमजोरियों ने ऐसी प्रणालियों को बार बार संभव बनाया। पुस्तक तकनीकी नवीनता के मिथक के स्थान पर निरंतरता, शक्ति और जवाबदेही का इतिहास रखती है। निष्कर्ष में, इफ देन उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डेटा साइंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चुनावी संचार, मीडिया इतिहास, युद्ध और तकनीकी नैतिकता के संबंध को समझना चाहते हैं। इतिहास के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को इसमें शीत युद्धकालीन अमेरिका, सामाजिक विज्ञान तथा कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा का सघन अध्ययन मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले पाठकों के लिए इसका लाभ अधिक व्यावहारिक है क्योंकि यह मॉडल की सटीकता, डेटा की प्रतिनिधिकता, प्रभाव के दावों और जवाबदेही पर बेहतर प्रश्न पूछना सिखाती है। यह पुस्तक किसी एल्गोरिथम को बनाने की मार्गदर्शिका नहीं है। इसकी शक्ति उस ऐतिहासिक विवेक में है जो बताता है कि लोगों के व्यवहार को मापने और बदलने की कोशिशों को केवल दक्षता के आधार पर नहीं परखा जा सकता। इन्हें लोकतांत्रिक सहमति, निजता, असमान शक्ति और संभावित हानि के संदर्भ में देखना होगा। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में लेपोर की विशेषता यह है कि वह आज के डिजिटल मंचों की आलोचना को उनके पूर्व इंटरनेट इतिहास से जोड़ती है। वह न तो तकनीक को अनिवार्य नियति मानती है, न सिमुलमैटिक्स की सीमित सफलता को निरापद मानकर छोड़ देती है। कंपनी की अतिशयोक्ति, असफलताओं और प्रभाव, तीनों को साथ रखकर वह दिखाती है कि अधूरे मॉडल भी संस्थाओं के निर्णयों और लोगों के जीवन पर असर डाल सकते हैं। यही संतुलित, अभिलेख आधारित दृष्टि पुस्तक को तकनीक और समाज पर लिखे समकालीन इतिहासों में अलग बनाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जिल लेपोर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।